मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 20 जून 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं जैस्मिन नायडू, आप जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। गुड्डन सिंह, आपका गांव है बीटा, जिला है मेरठ उत्तर प्रदेश से। और पूर्वा कुमारी, आप हैं न्यू दिल्ली से। तो जैस्मिन, गुड्डन और पूर्वा, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के न्यूज एनालिसिस पर हम लोग अभी बात करेंगे। मैं मुख्य विषय के बारे में आपको बता दूं, आज हम अनुच्छेद 356 के बारे में बात करेंगे। और अनुच्छेद 356 के बारे में क्यों बात करेंगे आप समझ चुके होंगे, लेकिन मैं अनुच्छेद 356 के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, मैं ये बताऊंगा कि इन चीजों की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। मतलब मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़े अलग अंदाज में आपसे बात करूं। लेकिन आइए इससे पहले अखबारों में जो आर्टिकल्स हैं और दूसरी खबरें आई हैं थोड़ी सी मैं उनके बारे उनको आज ज्यादा तरजीह दे रहा हूं। फ्रेंड्स अभी दिल्ली में सरकार हड़ताल पर है, आपने खबरें लगातार पढ़ी होंगी कि दिल्ली में जो आप पार्टी की सरकार है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऊपर राज्यपाल के दफ्तर में धरना दिए हुए हैं। अब वो धरना शायद खत्म भी होने वाला है या हो गया होगा, किसी भी समय हो सकता है, ये चूंकि बहुत ही घटित हो जाने वाली घटना है तो उस तथ्य को हम छोड़ते हैं, राइट। तो अब आप देखें कि दिल्ली में सरकार हड़ताल पर, पहली बात, पहला एक मतलब मुझे लगता है कि अपने ढंग का एक पिक्यूलियर मामला है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार जो हड़ताल पर है उसमें दूसरे बहुत से मुद्दे हैं, जिसमें एक तो यही है कि जो उपराज्यपाल हैं वो उन्हें दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं केंद्र सरकार के शह पर, वो एक बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी मांग यह भी है कि जो आईएएस अफसर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और उनका कहना है कि हम दिल्ली सरकार के साथ काम नहीं करेंगे, तो उनको काम करने के लिए कहा जाए कि वो दिल्ली सरकार के साथ काम करें। ये दो मुद्दे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, राइट। पहला तो यह कि सरकार हड़ताल पर, और वह भी चुनी हुई सरकार, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप के फ्रेम में आपको इसे देखना होगा कि चुनी हुई सरकार हड़ताल पर है और किसके लिए, किस रूप में है, कि उपराज्यपाल उन्हें काम नहीं कर रही, यानी कि टसल है ना, विरोध, यहां आप यो कह लीजिए कि काम करने में अवरोध आ रहा है। तो दिल्ली के संवैधानिक स्थिति क्या है, कैसे इस टकराव को दूर किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, ये एक पहला प्रश्न आपका सिविल सर्विस मेंस की दृष्टि से बनता है। दूसरी बात आप देखिए कि सरकार कह रही है कि आईएएस ऑफिसर्स हमारे साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए सामान्यतया सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों की जो एसोसिएशन है वो तो किसी मंत्री के बिहेवियर को या किसी बड़े नौकरशाह के बिहेवियर को या राजनेताओं के बिहेवियर को लेकर के आपत्ति व्यक्त करते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं, हड़ताल पर भी चले जाते हैं। लेकिन ये उल्टा हो रहा है कि सरकार कह रही है कि वो हमारे साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं और आईएएस एसोसिएशन ने साफ साफ ये बात कही कि नहीं, हम तो काम कर रहे हैं और काम हो रहा है। इस एक घटना घटित हुई थी, आपको मालूम होगा, कुछ समय पहले, जबकि दिल्ली के जो मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स भी वहां थे, एक मीटिंग के लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था और उनके साथ फिर मारपीट की घटना घटित हुई थी। खैर, तो अब आप देखें कि किस तरीके से अब यहां राजनीति और प्रशासन के बीच में इस तरह का अवरोध पैदा, अवरोध नहीं कहना चाहिए बल्कि अवरोध और टकराव दोनों कहना चाहिए, वो पैदा हो रहा है। चूंकि सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है इस दिल्ली के अभी होने हुई घटना का, इसके बारे में भी आपको तैयारी बकायदे करनी चाहिए। दोस्तों मैं आज आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस स्टैंडर्ड का, एयर इंडिया के बारे में, कि एयर इंडिया आपको मालूम है कि उसे अभी सरकार नीलामी करना चाह रही थी लेकिन लोगों ने बोली नहीं लगाई, यानी कि एयर इंडिया अभी भी सरकार के पास ही रहेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, इसमें खासकर इस आर्टिकल में आप देखिएगा कि एयर इंडिया की कमजोरियां क्या हैं जिसकी वजह से लगातार घाटे पर चलती जा रही है, किस तरह का इसका प्रबंधन है। और इनफैक्ट ये बात एयर इंडिया की जरूर हो रही है, लेकिन सच पूछिए तो यह समस्या भारत के जितने भी पीएसयूज है, ज्यादातर पीएसयूज जो घाटे में चल रहे हैं, जिसे हम पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं, सार्वजनिक उपक्रम, उनके सबके साथ है। तो यहां से आपको वो सूत्र मिल जाएंगे और आप इन्हें बकायदे नोट कर सकते हैं, और जब भी पीएसयू के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसमें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कल मैंने भरत झुनझुनवाला साहब का एक आर्टिकल आपको दिया था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। चलिए उसके आधार पर मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भारत वस्तुओं, निर्मित वस्तुओं की लागत को कम करके चीन के अनुकूल समानांतर पहुंच जाए, इसके लिए उसे कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए। भरत झुनझुनवाला का कल आपने आर्टिकल पढ़ा है, क्या आप इसका उत्तर देने की स्थिति में हैं? क्या भरत झुनझुनवाला साहब का आर्टिकल पढ़ने के बाद उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट किए? और अगर नोट नहीं किए तो आप मान करके चलिए कि केवल टाइम पास किया है आपने, आत्मसंतोष मिल गया कि हाँ सर ने आर्टिकल दिया था, हमने पढ़ लिया, लेकिन हासिल तो कुछ नहीं हुआ। आपके पास तो कुछ नहीं रहा ना, वो रहना बहुत जरूरी है मित्रों। इसी तरह से मैं आपको एक आर्टिकल हिंदुस्तान का प्रोवाइड कर रहा हूं G7 पर, G7 ग्रुप ऑफ सेवन, मीटिंग चल रही थी कनाडा में और वहां से फिर ट्रंप साहब मीटिंग को छोड़ करके फिर यहां सिंगापुर किम जोंग से बात करने के लिए आ गए थे, लेकिन वहां उनका जो रवैया रहा वो अलग रहा कि G7 का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तो चूंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, और संस्थानों के बारे में जानना आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में है, जनरल स्टडीज मेन्स 2 के पेपर में, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए क्योंकि एक बड़ी घटना है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ी सी दूसरी खबरों के बारे में आपसे बात की है। अब मैं आता हूं अनुच्छेद 356 पर, और इसकी पृष्ठभूमि क्या है उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार थी, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी लगभग 3 साल पहले, और अब भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से समर्थन उस सरकार से वापस ले लिया है। अब देखिए कि वहां आगे क्या स्थिति होती है, और स्थिति यही होगी कि वहां 356 अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल शासन लगा दिया जाएगा। ये कुल मिलाकर के इसकी पृष्ठभूमि है, राइट। दोस्तों होता क्या है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, देखिए आप चुनौती क्या है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक घटना है, इस एक घटना से 2 प्रश्न आपके बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से भी बन रहे हैं और पॉलिटी से भी बन रहे हैं। खैर जो पहला प्रश्न है वो तो प्योरली पॉलिटी से ही है, और वो क्वेश्चन ये है भारत में गठबंधन सरकारों का भविष्य। और ये जो गठबंधन है याद रखिए कि राज्यों में ही नहीं है, केंद्र में भी है। अभी की जो सरकार है बेसिकली गठबंधन की ही सरकार है, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी के पास, ठीक है चुनाव जब लड़े जो हुए थे तब उसके पास पूरा बहुमत था, लेकिन उसने अपने गठबंधन का धर्म निभाते हुए गठबंधन सरकार का गठन किया। तो आप देख रहे हैं कि लंबे समय से केंद्र में गठबंधन सरकार चली आ रही है और राज्यों में भी है, अभी खासकर 2 उदाहरण आप ले सकते हैं, दूसरे राज्यों में भी, नॉर्थ ईस्ट में है वगैरह में, लेकिन यहां 2 उदाहरण मैं इंपॉर्टेंट देना चाहूंगा। एक तो जम्मू कश्मीर 3 साल तक चली, अब वो सरकार गिर गई, और इसके बाद कर्नाटक में भी अभी जो सरकार बनी है आपको मालूम है कि वो गठबंधन की सरकार है ना, जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है, और आप देखते हैं कि बीच बीच में अखबारों में उनके भी आपसी विवादों की खबरें आ जाती हैं। तो गठबंधन सरकारों का भविष्य या भारतीय राजनीति की मजबूरी या इससे उबरने के उपाय या गठबंधन सरकार किन मायने में फायदेमंद होती है, किस तरीके से ये जो बहुसंख्यक की जो तानाशाही है उस को नियंत्रित करती है, या किस तरीके से यह बेसिकली जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करती है, इस तरह के ढेर सारे प्रश्न इस केवल गठबंधन सरकार के आधार पर बनते हैं। तो ये आपकी दृष्टि में होना चाहिए, तब जाकर के आप सही रूप में समझ पाएंगे। अब मैं आता हूं सेकेंड पॉइंट पर फ्रेंड्स, कि जम्मू कश्मीर में 356 धारा अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा होगी, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल शासन लगाया जाएगा। अब आप देखिए कि जब हम इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ते हैं ये तो एक घटना है जो अखबारों में है, यानी कि अब आपको 356 का व्यावहारिक रूप अखबारों में झलकता हुआ दिखाई देगा। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, किताब है। आप किताब में राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ते हैं कि आपातकाल उपबंधों के बारे में पढ़ते हैं कि ये आपातकाल उपबंध है। मित्रों, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो चुनौती है, खासकर प्री एग्जामिनेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो ये है कि आपने चीजों को कितनी बारीकी से देखा और समझा है। याद रखिए, कितनी बारीकी से देखा और समझा है, यानी कि जब आप पढ़ते हैं इस टॉपिक को तो आप पाते हैं कि जो आपातकालीन जो उपबंध है उसके लिए अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। कितने तरह के और आपातकाल हैं, तो उसमें फिर आप पाते हैं कि 3 तरह के आपातकाल है। लेकिन ये आपके दिमाग में बैठेंगे तब जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अदरवाइज तो केवल आपको चीजें याद होंगी। फिर आप देखते हैं कि इनका संबंध किससे है, तो 352 में आप पाते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल है, पूरे देश के ऊपर संकट आ गया है, कोई युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, तो बट नेचुरल है कि पूरे देश पर में आपात आ गया है। तब फिर आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें मेंशन किया हुआ है कि अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। अब आपने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, मैं आपको केवल पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। देखिए, मैं अनुच्छेद 356 के बारे में नहीं बता रहा हूं। जब आपने ये पढ़ा कि अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, तब फिर आपको चाहिए कि आप देखें कि भैया ये अनुच्छेद 19 है क्या, और फिर आपको गहराई से देखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं, ये मूल हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है, 19 to 22, और इसे कहा गया स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारे दिमाग में पढ़ते समय ये बैठता है कि जो अनुच्छेद 19 है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कहा है अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता के अधिकार में फिर कई अनुच्छेद हैं और अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। तो जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लगा कि अनुच्छेद 19 में 6 तरह के अधिकारों की बात की गई। स्वतंत्रता है लेकिन 6 तरह के अधिकारों की बात की गई है, कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की यानी कि संचरण विचरण करने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है, प्रोफेशन की स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 19 है। लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उन अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 में और भी दूसरे तथ्य हैं, तो वो निलंबित नहीं होंगे। अब मान लीजिए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 है, यह भी स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसमें कह रहा अनुच्छेद 19। तो जब तक आप इन बारीक चीजों को नहीं देखेंगे समझेंगे, तब तक हल कर पाना मुश्किल होता है। जैसे इस बार जो अभी आपके एग्जाम हुए कुछ दिनों पहले, देखिए उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेट डी का क्वेश्चन नंबर 38 है। इसको मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, तब आपको आप उन चैलेंजेस को समझ पाएंगे जो चैलेंजेस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपको प्रिपरेशन के लिए देता है, कि ये चैलेंजेस है और आप इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके और उसके अनुकूल अपने को ढालिए। क्वेश्चन नंबर 38 है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो ए, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, बी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, सी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, डी, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। अब आप देखिए कि ये जो विकल्प दिए गए हैं, ये विकल्प बहुत बारीक विकल्प हैं, आपको कंफ्यूजन में डालने वाले विकल्प हैं, भ्रम में डालने वाले विकल्प हैं, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यही तो चेक करना चाहता है कि आप कितने स्पष्ट मस्तिष्क के हैं, आपके दिमाग में जो तथ्य हैं वो कितने ठोस तरीके से बैठे हुए हैं और आपको भ्रमित नहीं किया जा सकता, यही वो इस परीक्षा के माध्यम से चेक करना चाह रहा है। तो मित्रों, मैंने आपसे 356 के बारे में बिल्कुल बात नहीं की है, उसके आधार पर मैंने बात की है आपकी प्रिपरेशन को लेकर के। और जहां तक अनुच्छेद में आपके 356 का सवाल है किताबों में है, अब आप पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा सुधार लाइए तो सही मायने में आप इस डेली ऑडियो लेक्चर का फायदा उठा सकेंगे। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं ओंकार रविन्द्र कुलकर्णी अमरावती महाराष्ट्र से, दीपक कुमार कुमेरी उत्तर प्रदेश से, देवेश वर्मा, शालू पांडे बीएचयू वाराणसी से, शिवा दुबे, अश्वनी द्विवेदी सतना मध्य प्रदेश से, और अभिजीत कुमार, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।